परमपिता परमेश्वर की महति अनुकंपा महापुरुषों की मंगलमयी प्रेरणा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के सप्तम अध्याय तृप्तिदीप प्रकरण के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो विचार चल रहा था जो विपरीत भावना है शरीर आदि को मैं मानना। यहां सूत्रात्मक रूप से विद्यारण्य स्वामी जी महाराज कहे आत्मा जो है देह से अतिरिक्त है। ऐसी तत्व भावना जब हो जाती है उस अवस्था में विपरीत भावना नष्ट होगी। मैं शरीर हूं ऐसा बोध होगा तो ये विपरीत भावना है। इसलिए शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में एक जगह पे लिखते हैं त्वंग मांस मेदोस्ति पुरी सरासो अहम मति मूढ़ जन करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपं परमार्थभूतम्। वो कहते हैं त्वंग मांस मेद अस्थि पुरीष मल आदि जो है शरीर इन्हीं को जो अहम मतिम यही मैं हूं जो मानता है यही विपरीत भावना है। लेकिन जो विचारक है चिंतक है निजस्वरूपम परमार्थ भूतम विलक्षणम व्यक्ति जो विचारशील व्यक्ति है बार बार जब विचार करता है तब अनुभव में आता है शरीर से भिन्न मैं हूं। शरीर अलग है मैं अलग हूं। देखो तीन प्रकार से आपको बोध होगा। पहले तो मैं शरीर हूं ऐसा बोध व्यक्ति को रहता है मैं ही शरीर हूं। सत्संग करेंगे थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो पता लगेगा शरीर तो यहां मृत बन करके पड़ा रहता है लेकिन शरीर से कोई अलग तत्व था जो शरीर से हट गया। वो शरीर नहीं है शरीर से भिन्न है उसके रहते शरीर में संपूर्ण क्रियाएं हो रही थी। तो थोड़ा विचार करने से पता लगता है और शास्त्र में कहते हैं कि कर्म के अनुसार वो अनेक लोक लोकांतर में गमन करता है। तो कुछ है जो शरीर से विलक्षण है। तो दो चीज आपके सामने अभी आ गई एक आत्मा है दूसरा शरीर है। तो द्वैत हो गया कि नहीं हो गया एक आत्मा है दूसरा शरीर है। अब शास्त्र कहता है जो दिखाई पड़ रहा है ना जो भी दिखाई पड़ता है दृष्टम नष्टम स्वभावम जो भी दिखाई पड़ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो देख रहा है वो सत्य है वो नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जो दृग रूप है वो आपके स्वरूप है। तो शरीर से विलक्षण है ऐसा जब बोध होगा और शरीर भी काल्पनिक है शरीर की सत्यता नहीं है काल्पनिक है ऐसा जब बोध होगा तत्व भावना उसी को कहते हैं कि आप थोड़ा सा और परिशुद्ध करेंगे तो आपको लगेगा कि शरीर मैं तो शरीर के अंदर हूं और शरीर को जानता हूं। तो शरीर के घेरे में ही मैं हूं ऐसा बोध होता है। शास्त्र जब अध्ययन करेंगे तो पता लगता है सब शरीर में आप है केवल इसी शरीर में नहीं सबके शरीर में आप है। दूसरी बात कहते हैं केवल शरीर के अंदर नहीं बाहर भी आप है। तो परिपूर्णतम रूप जो है आपका स्वभाव है स्वरूप है। तो इसी प्रकार यहां 12वां श्लोक में जो विपरीत भावना है देह से आत्मा अतिरिक्त है विलक्षण है ऐसा जब आप चिंतन करेंगे तत्व भावना से तो विपरीत भावना नष्ट हो जाती है और जगत भी मिथ्या है ये आपको अनुभव में आएगा। तो ये जो निश्चय है शरीर से मैं विलक्षण हूं, शास्त्र चिंतन करेंगे तो अनुभव में आएगा शरीर से मैं विलक्षण हूं, उसके ऊपर आगे आक्षेप करते हैं। तत्र जपादो इव नियम अपेक्षा अस्ति वा न वा इति पृच्छति। तत्र का अभिप्राय जो देह शरीर जगत है इनसे विलक्षण है आत्मा, तो जैसे इसको जानने के लिए अनुभव करने के लिए नियम से करना है कि अनियम से करना है। जैसे जब आती आप करते हैं तो जब करेंगे तो नियम से करेंगे, सवेरे स्नान करना है, फिर अपवित्र पवित्र वह सर्वावस्था गतो विवाह थोड़ा मंत्र बोलना है, फिर गुरु को स्मरण करना है, इष्ट को स्मरण करना है, एक आसन में बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ सिर कर मुख करना है, नियम है उसी में। तो नियम करके जैसे आप जप करते हैं ऐसे ये तत्व भावना करनी है, अथवा बिना नियम से, नियम से करना है कि अनियम से करना है ये पूछते हैं इसमें। तत्र जपादो इव, जप के जैसे नियम अपेक्षा अस्ति वा न वा इति पृच्छति। तो उसके उत्तर में उसको आगे उत्तर देंगे, किम मंत्रवन मूर्ति ध्यान वद्वात्म भेदधि जगन मिथ्यात्वधिश्चात्र व्यावर्त्यासा उतान्यथा। किम आत्मभेदधि जगद मिथ्यात्वधिश्च मंत्र जपवत मूर्ति ध्यानवत वा व्यावर्त्र अर्त्र स्यात् उत अन्यथा। तो यहां कहते हैं जैसे आत्मभेदधि, शरीर आत्मा से शरीर भिन्न है, शरीर से आत्मा भिन्न है, भेद बुद्धि मैंने आपको पता लग गया कि शरीर से अलग एक आत्म तत्व है। दूसरी बात कहते हैं जगत मिथ्यात्व धी, जो भी जगत दिखाई पड़ रहे हैं ये कहता है मिथ्या है। मिथ्या का अभिप्राय है जो नहीं है लेकिन दिखाई पड़ता है, नहीं होने पर भी दिखाई पड़ना, जैसे स्वप्न दृश्य, कुछ है नहीं वहां लेकिन फिर भी आप देखते हैं। जैसे आप सोच लीजिए रात्रि में स्वप्न देखे और एक झुंड जो है हाथी आपके घर में आ गए, स्वप्न देख रहे हैं, एक हाथी नहीं प्रवेश कर सकता आपके घर में और झुंड झुंड हाथी आप देख रहे हैं स्वप्न में, और उसमें भी थोड़ा और विचार करेंगे शरीर के अंदर आप देख रहे हैं, अपने शरीर के अंदर आप देख रहे हैं, वहां कोई हाथी रह सकता है क्या? लेकिन फिर भी वहां जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो दृश्य है दिखाई पड़ने पर भी मिथ्या है, किसी वहां योग्य देश नहीं है जहां हाथी रह सके, फिर भी आपको दिखाई पड़ रहा है इसलिए मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना सामने, विशाल संसार, ये भी स्वप्न के जैसा दृश्य होने से इसके अस्तित्व नहीं है, आत्मा के अस्तित्व से ये अस्तित्ववान है। तो इसी प्रकार दोनों चीजों को एक साथ लिए हैं, आत्मभेदधि जगत मिथ्यात्वधिश्च अत्र किम मंत्र जपवत मृत्यु ध्यानवत वा व्यावर्त्य। दोनों में जैसे वहां नियम से किया जाता है मंत्र जप और ध्यान भी नियम से किया जाता है, तो इस प्रकार उत अन्यथा, नियम से करेंगे अथवा बिना नियम से करेंगे, यही इसमें प्रश्न है। तत्व भावना को जैसे मंत्र जप और ध्यान को नियम से किया जाता है, ठीक इसी प्रकार तत्व भावना को भी नियम से किया जाएगा अथवा बेनियम से किया जाएगा, बिना नियम से किया जाएगा, ये इसमें प्रश्न है। टीका देखेंगे तो और स्पष्ट होगा उसमें। किम मंत्र जपवत इति, आत्मभेदधि आत्मनो देहादिभ्यो विभिन्न ज्ञानम जगतो मिथ्यात्व अनुसंधानम च, दोनों को एक साथ लिए। आत्मभेदधि का अर्थ के आत्मनो देहादिभ्यो विभिन्न ज्ञानम, देहादि से आत्मा भिन्न है ऐसा ज्ञान, और दूसरा जगतो मिथ्यात्व अनुसंधानम, जगत मिथ्या है ऐसे अनुसंधान करना। इन दोनों चीजों को मंत्र जपवत, देवता ध्यानादिवत किम नियमेन अनुष्ठातव्यम, नियम से उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उत अथवा लौकिक व्यवहारवत नियम अंतरेणापि कर्तुम शक्यत इति, बिना नियम से आप कर सकते हैं क्या? नियम से करेंगे कि बिना नियम से करेंगे? अब आगे बताएंगे, उसके लिए कोई नियम नहीं है। आत्मचिंतन के लिए कोई नियम नहीं, लेकिन आप जॉब करना चाहते हैं, अब जैसे आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान में जब आप संकल्प कर लिए, वहां बीच में आप उठ नहीं सकते। अनुष्ठान में जब आप वहां संकल्प करके बैठ गए ना, तो वहां उठना नहीं होगा। आप बीच में यदि उठेंगे तो यहां आगे बताएंगे, नियम से करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियम से करेगा ना, उसको स्वर्ग से प्राप्ति होती है। और बीच में ही नियम तोड़ दिया आप, तो जिस संकल्प से आप किए थे ना, वो परिपूर्ण नहीं हो, लेकिन पुण्य जरूर होता है। आप थोड़ा बहुत भी जप करेंगे तो उसका पुण्य होता है। तो जप भी अनेक प्रकार का, जैसे अनुष्ठान वगैरह अलग है, और ऐसे आप जप करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा है जप करते हैं इधर बात भी करते रहते हैं थोड़ा सा, तो जप का भी फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो भी पुण्य होता है। एक बार भी भगवान नाम लेने से वो बहुत पुण्यकारक है, तो इसलिए वो। लेकिन यहां जिस चीज को लिए हैं, नियम से जो चीज किया जाता है, कुछ अनुष्ठान वगैरह है जिसको आप नियम से करते हैं, जैसे आप रात्रि में खाट पे सोते सोते भी जप करते हैं, कर सकता है व्यक्ति। अब गाड़ी में जा रहे हैं जप कर सकते हैं, लेकिन किसी को बताने की क्या जरूरत कि मैं जप कर रहा हूं, आप अपने मन से जप कर रहे हैं, मानसिक जप कर रहे हैं। तो दूसरे बैखरी उपांशु इन जपों से श्रेष्ठ है मानसिक जप, वो फल देगा, अपने आप फल देगा। तो लेकिन यहां शंका ये करते हैं, जैसे शरीर से आत्मा विलक्षण है, तो उसको जानने के लिए कुछ नियम करना पड़ेगा कि बिना नियम से हो जाएगा? तो यहां इसका समाधान दिए कि जप और ध्यान यदि आप करना चाहते हैं, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं अभी, अब ठीक बैठे, अब 5-10 मिनट हो गया, मन को आप एकाग्र करना चाहते हैं, अब इतने में आपकी बहू बोली कि थोड़ा सा एक मिनट के लिए माताजी इधर आ जाइए, तो आप ध्यान छोड़ करके आ गए, तो जो उसमें मन को एकाग्र कर रहे थे विक्षिप्त हो जाएगी, नहीं हो गए, वो फल नहीं देगा। फिर चिंतन तो चल ही रहा था, क्योंकि एक साथ तो होता नहीं है, प्रारंभ में व्यक्ति आस्ते आस्ते मन को जो है शांत करता है। मन तो हर समय आगे इसमें आएगा, चंचल स्वभाव है मन का, उस चंचल स्वभाव को धीरे 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 साधक साधिका जो है शांत करते हैं। अब जिस समय थोड़ा सा शांत होने वाला है, उस समय कोई विक्षेप आ गया तो फल नहीं देगा। फिर जिस नियम से जिसको करना चाहिए वैसे करना पड़ेगा। तो इसके आगे उसको बतलाते हैं, दृष्ट फलकत्वात् नात्र नियमः कश्चित् अस्ति इत्याह। जो तत्व ज्ञान है उसका फल कैसा है? दृष्ट फलकत्वात्, दृष्ट फल देने वाला है वो, जो अदृष्ट फल देगा उसके लिए नियम चाहिए। अब अदृष्ट फल देगा, अब कहेंगे ब्रीहीन प्रोक्षति, अब जो जौ है धान है उसको थोड़ा सा प्रोक्षण कर लिए, फिर उसको जो है उसके तुषार निकाल करके, फिर उसको आप कुटाई करेंगे, फिर पुरोनाश बनाएंगे, फिर हवन करेंगे उससे। तो जो आम थोड़ा सा पानी ऐसा छिटक दिए आप, उसका फल जो है अदृष्ट है। आप कहेंगे क्या जरूरत है यहां पानी छिटकने के लिए, ऐसा यदि प्रश्न करेंगे जो फल देने वाला नहीं होगा। जो फल जैसे आजकल लोग कहें ना शादी वगैरह होती है, वो नियम है कि क्रम से होता है, उसके कलश स्थापना करेंगे, नवग्रह पूजन होगा, क्या क्या मातृका पूजन होगी, ये होगा वो होगा, वर पक्ष के पूजन होगा, फिर लड़की के पक्ष, आस्ते आस्ते उसके क्रम में अंतिम में हस्तबंधन होगा, फिर उसमें सप्तपदी होगी, हवन होगा, सब कुछ है उसमें। लेकिन इन सब चीजों को लोग जल्दी कर दीजिए, फूलमाला की बात करो, एक दूसरे को फूलमाला डाल दें, काम खत्म हो गया। तो जो शादी जिस विधि से होनी चाहिए उसको व्यक्ति करता नहीं है, तो जो फल होना चाहिए ना वो फल नहीं दिखाई पड़ता है। शुरू से ही झगड़ा झंझट घर में शुरू हो जाता है, किसी के साथ किसका तालमेल नहीं बैठता है। तो ऋषि लोग जो प्रक्रिया बतलाए हैं बहुत मनोवैज्ञानिक है, वो उसको व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। लेकिन यदि आप नियम में उसको करते हैं तो फल देगा। तो जितने भी आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे आदि आदि, उसके आगे फल दे। अभी आप जप कर रहे हैं तो तुरंत आपको कुछ मिलने वाला नहीं, राम 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 कर रहे कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन ये अदृष्ट बन करके आपके अंतःकरण में रहता है। वो हो सकता है मृत्यु के समय में वो नाम आपको याद आ जाए अंतिम समय में, अथवा याद नहीं भी आ गया नाम, तो आगे चल करके जब उसके हिसाब किताब होगा तो वही ये कुछ तो पुण्य किए थे इसलिए उनको उत्तम फल मिलना चाहिए, उत्तम लोग मिलना चाहिए, आगे फल देगा वो। तो इसलिए नियम से जिस चीज को बतलाए हैं तो उसको नियम से करना पड़ेगा। और यहां कहते हैं जो तत्व ज्ञान है वो दृष्ट फल वाला है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद आप मुक्त होंगे, जिस क्षण आपको ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण आप मुक्त होंगे। ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो असो विगत ज्वर, जिस समय ज्ञान उसको मिल गया उसी समय वो मुक्त हो गया। इसलिए अपने शास्त्रों में यही बताते हैं कि ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हो जाता है, फिर जब शरीर छूट जाता है तो विदेह मुक्त होता है। तो उसका फल जो है दृष्ट फल, अभी उसको बतलाएंगे। दृष्ट फलकत्वात् न अत्र नियम कश्चित अस्ति इति आह अन्यथेति बिजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवान् बुभुक्षुर्जपवद् भुङ्क्ते न कश्चित् नियतः क्वचि। अन्य थेति के अभिज्ञा बिना नियम से, नियम के बिना, अन्यथा शब्द का अर्थ नियम के बिना। भुक्तिवत दृष्टार्थत्वेन बिजानीहि, भुक्तिवत जैसे आप भोजन करेंगे तो उसके अर्थ जो है दृष्ट है, भोजन करते ही आपकी भूख मिट जाएगी। ऐसा नहीं कि आज भोजन करेंगे तो पांच दिन के बाद भूख मिटेगी, ऐसा होता है नहीं। सवेरे आप भोजन किए तो शाम को भूख मिटेगी, जिस समय आप एक एक कौर लेते जाएंगे तब तक आपकी भूख मिटती जाएगी। ठीक इसी प्रकार आत्मचिंतन जब आप करते जाएंगे ना तो आपका अज्ञान नष्ट होता जाएगा, आस्ते आस्ते अज्ञान नष्ट होता जाएगा। अब ऐसा एक समय आएगा कि परिपूर्णता को आप हासिल कर लेंगे। तो दृष्ट फल वाला है कैसे, भुक्तिवत लौकिक दृष्टांत दिए, जैसे भोजन करने से भूख मिट जाती है, कश्चित बुभुक्षुर नियतः क्वचित न जपवद भुंगते, कोई बुभुक्षुर भूखा व्यक्ति, अब उसको जब भोजन मिलेगा, भूखा व्यक्ति का मतलब जैसे दो चार दिन से कुछ उसको खाने के नहीं मिला है, ऐसा कोई बुभुक्षु व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, अब जब उसको भोजन मिलेगा तो भोजन मिलते ही गीता की 15वां अध्याय पढ़ेगा क्या? जैसे भोजन मिलेगा वो तो सोचेगा चलो बहुत दिनों के बाद भोजन मिला है, अभी 15वां अध्याय पढ़ेंगे, फिर ओम नमः पार्वती पते करेंगे, फिर उसके बाद भोजन करेंगे, ऐसे होता है क्या? जैसे भोजन मिलेगा तुरंत खाना शुरू करेगा, उसके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो तत्व ज्ञान है ना, अज्ञान को नाश करता है वो, तो इसलिए जब तत्व ज्ञान मिलेगा उसको, कहने का मतलब जो जिज्ञासु होगा, और जिसके पास जिज्ञासा है नहीं तो वो तो सोचेगा चलो और दूसरे महात्मा जी आएंगे तो सुन लेंगे, और कोई महात्मा आएंगे तो सुन लेंगे, वो तो सुनते रहते हैं, तो इसमें क्या है, मुमुक्षुता नहीं है। जहां मुमुक्षु होगा तो तुरंत उसको प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वेदांत शास्त्र में कहते हैं विवेक और वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा बहुत विवेक तो सबको है लेकिन वैराग्य नहीं हो पाता है। आ ब्रह्मस्थावरांतेषु वैराग्यम विषय स्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम तदि निर्मलम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं अंकुर से लेकर के ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक, सबके प्रति निस्सार भाव, तब जाके निर्मल वैराग्य होता है। और जैसे कौवे के बीट, जैसे आपके आप रास्ते में जा रहे थे, कौवा बीट कर लिया तो आप सोचेंगे चलो इसको संग्रह किया जाए फिर जाकर के तिजोरी में रखेंगे, ऐसा कोई करता है क्या? तो शंकराचार्य भगवान वहां बहुत सुंदर उसमें टीका लिखते समय उसमें बतलाए कि कौवा के बीट भी आजकल काम आ जाएगा, कोई दवाई लोग बनाते हैं, गधे के बीट भी उसके जो लीद होते हैं ना उसको भी लोग दवाई बना करके प्रयोग करते हैं। लेकिन अपनी उल्टी को एक बार उल्टी करने के बाद कोई व्यक्ति संग्रह करेगा क्या उसको? उल्टी जैसे उसके प्रति निस्सार भाव है, व्यर्थ हो गया, भले अभी 56 प्रकार के भोग खाए थे एक मिनट पहले, अब किसी कारण से उल्टी यदि हो जाए, नहीं नहीं अभी तो मैं खाया हूं लेकिन दोबारा भी खाया जा सकता था, कुछ सोचता है क्या? जैसे उसको अनदेखा कर देता है व्यक्ति, बार बार देखना नहीं चाहेगा, एक बार उल्टी करने के बाद देखते हैं क्या क्या निकला है, ऐसा कोई सोचता है, तुरंत जैसे मन को आंखों को हटा लेता है वहां से, ठीक इसी प्रकार जगत के प्रत्येक वस्तुओं से जो मन को हटा लिया है। तो इस प्रकार यहां भी विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है, जिसके कारण आप मुमुक्षु बनेंगे। संसार की चीजें जब तक आपको लुभावना है, आकर्षक है, प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक मन जो है बार बार संसार की तरफ चला जाता है। तो इसलिए यहां जो बुभुक्षु है वो ऐसे मुमुक्षु, मुझे मुक्ति मिले, मोक्ष में भूयात इतनी दृढ़ इच्छा, अभी ही मुझे मुक्ति मिले, चलो अभी नहीं भी है तो कम से कम व्यक्ति इसी जन्म में मुझे मुक्ति मिले। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी महाराज थे, वो कहते थे जैसे आप जिस जगह पे सोते हैं ना, तो आपके खाट जैसे पड़ा हुआ है तो रोज आप उसी जगह पे सोते हैं, सोने से आप जब जगेंगे तो आपकी आंख तो कहीं ना कहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उस जगह पे आप बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है। वो कहते थे ये मेरा अंतिम जन्म, जैसे आप जगेंगे तो पहले उसको देखेंगे। और उसके अनुरूप रोज आप थोड़ा थोड़ा कुछ जप ध्यान आदि आदि को बढ़ाना है आस्ते आस्ते, तो अंतःकरण शुद्ध होगा। केवल लिख के रख देने से कुछ नहीं होगा। लोग तो बहुत सुंदर लिख करके रख भी सकते हैं, उसके अनुरूप अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे किसी को कोई लड़का है, सोच लिया मुझे जो है कलेक्टर बनना है, और बनना है तो पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे लिख के रख देने से होगा? परिश्रम तो उसको रोज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक दिन परिश्रम करेगा और दूसरे दिन नहीं करेगा। रोज करते 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 20-25 साल में सिविल एग्जाम में फिर वो टॉपर हो जाता है, उस चीज को हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा विचार होना चाहिए व्यक्ति को। तो आगे इस श्लोक का अन्यथा इति, अन्यथा शब्द का अर्थ कहते हैं नियमम बिना इत्यर्थः। तत्व भावना बिना नियम से किया जाता है। उसके लिए जब भी आपको अच्छा लगे, चाहे आप लेटे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो हर अवस्था में आप जो है तत्व भावना कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तत्र हेतु महा, उसमें हेतु देते हैं दृष्टार्थत्वेन इति। तत्व भावना से जो ज्ञान होगा, विपरीत भावना नष्ट होती है, वो दृष्टार्थ है। कैसे? तत्र दृष्टा में भुक्तिवत्, दृष्टार्थे अपि भोजने नियमः श्रुति स्मृतियोर उपलभ्यन्ते इति आह। इसमें कहते हैं दृष्टार्थ जो भोजन है, इसमें भी बहुत सारे नियम है। कहां? श्रुति स्मृतियोर उपलभ्यन्ते, श्रुति में भी और स्मृतियों में भी बतलाया गया है कि आप भोजन भी करना है तो कौन से दिशा पे आपके सिर होना चाहिए, कैसे आपको बैठना चाहिए, भोजन बाएं हाथ से करना है कि दाएं हाथ से करना है, पानी बाएं हाथ से पीना है कि कौन से हाथ से, उसमें नियम है सब भोजन करते समय। तो श्रुति स्मृति में सब नियम बतलाया गया है, भोजन भी करना है तो वो भी भक्ति के एक अंग है, वहां नियम बतलाया गया है। लेकिन यहां कहते हैं जो बुभुक्षु है, भूखा है आप कई दिनों से, ऐसे व्यक्ति के लिए बुभुक्षु रीति क्षुत अपनयनाय भोक्तुम इच्छन पुरुषो जपम कुर्बानम एवं न नियमेन भुंक्ते। जो बुभुक्षु है, क्षुधा मात्रा को उसको हटाना है, क्षुत अपनयनाय क्षुधा को हटाने के लिए भोक्तुम इच्छन पुरुषो, भोजन करने के जो इच्छा वाला पुरुष है, जपम कुर्बानम एवं न नियमेन भुंक्ते। जब जैसे नियम से करते हैं, इस प्रकार नियम से भोजन नहीं करता है। भोजन सामने आ गया बस जल्दी भूख मिट जाए, यही उसकी इच्छा है। अपितु यथा क्षुद बाधा उपशांति, जिस प्रकार से क्षुधा रूपक बाधा की शांति हो जाए, क्षुधा दूर हो जाए, तथा भोजनम करोति इत्यर्थः। उसी प्रकार वो भोजन करता है, उसमें कोई नियम नहीं रहता है। हां, जो घर में रहता है स्वस्थ पुरुष है, अब उसके लिए तो नियम है। जैसे आजकल खड़े खड़े लोग भोजन कर लेते हैं, बफाई सिस्टम है ना, खड़े खड़े भोजन कर लेते हैं। अब लोगों के पास समय ही नहीं है, उनके पास जो है समय नहीं है, खड़े खड़े भोजन कर ली, अब उसमें झूठा भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो सब तामसिक भोजन में आता है। उच्चिष्ट जो भोजन है वो तामस में आता है। तो इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, जैसे घर में हम लोग फ्रिज का भी उपयोग करते हैं ना, जो भोजन बाहर में रहता है उसको लेकर के फिर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो झूठा हो गया ना, कहीं ना कहीं हाथ लग गया, कुछ हो गया, तो झूठा हो गया। उसको फिर फ्रिज में रखे और फ्रिज में भी जितने चीज थी वो भी सब झूठे हो गए, नजर में जितने थे सब झूठे हो गए। तो इसलिए कहने का अभिप्राय जो भोजनालय होते ना वहां लक्ष्मी का वास है, वो लक्ष्मी उस जगह पे रहती है जहां पवित्रता रहती है, जहां पवित्रता होगी वहां लक्ष्मी रहती है। तो इसलिए माताओं को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि भोजनालय को शुद्ध रखें, खाते पीते समय पहले से ही संस्कार। तो इसी से क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के अंदर जितनी शुद्धता आएगी, नियम से जब आप जितने करेंगे ना, उससे अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त होंगे, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से जो हम लोग नित्य करते हैं ये व्यवहारिक चीज है। थोड़ा सा व्यक्ति ध्यान देता है इन सब चीजों, रोज तो करना है ही, लेकिन संस्कार से करना है। भोजन करना है तो संस्कार से करिए, इतना तो व्यक्ति भूखा तो है नहीं। लेकिन यहां कहते हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, इसी जन्म में प्राप्त करना है, अभी करना चाहता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो उसके लिए एतद एव प्रपंचयति, इसी चीज को और थोड़ा सा विस्तार से कहते हैं। अश्नाति वा न वास्नाति भुंक्ते वा स्वेच्छयान्यथा येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति। इसमें कहते हैं अस्नातिवा न अस्नातिवा, अन्यथा स्वेच्छया भुंक्तिवा, एन केन प्रकारेण क्षुधाम अपनिनिशति। कहते हैं अस्नातिवा, भोजन मिल जाता है तो खा लेता है, अब भोजन यदि नहीं मिले तो नहीं खाता है, और बिना ढंग से खाता है, अन्यथा स्वेच्छया भुंक्ते वा, ढंग से भी खाता है, बिना ढंग से भी खाता है, नहीं मिलने से नहीं भी खाता है। लेकिन उसके मुख्य लक्ष्य क्या है, एन केन प्रकारेण क्षुधाम अपनिनिशति, क्षुधा को हटाना चाहता है जिस किसी प्रकार से, उनका निवारण करना है क्षुधा हटाने के लिए। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो है ना, कुछ शिष्यों को लेकर के जा रहे थे साथ में, और स्वामी जी जाते थे तो पढ़ाते रहते थे, उस समय चलते चलते जाते थे, कहीं उत्तर प्रदेश में गांव गांव में घूम रहे थे, तो कुछ जंगल जैसा पड़ा, आठ दस कुछ शिष्य भी उनके साथ थे, जा रहे थे, तो संयोग की बात है उस दिन जो है जंगल थोड़ा लंबा था, अब सवेरे से बिना भोजन किए चले थे, बिना नाश्ता किए चले थे, तो एक दो शिष्य कहे कि स्वामी जी आज कहीं भोजन भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्वामी जी कहे कि आज एकादशी है, सोच लो उसमें क्या है, रास्ते में पानी मिलेगा तो पी करके, एकादशी के दिन पानी पी करके रहते कि नहीं रहते, तो ऐसे ही सोच लो आज जो है एकादशी है। अब लेकिन फिर भी स्वामी जी पढ़ाते रहे, पहुंच गए लगभग तीन चार बजे एक गांव में, तो गांव के बाहर में एक स्कूल था, स्कूल में जाकर के वो लोग रुके, रुकने से वही जो जिनको भूख ज्यादा लग रही है वो बार बार पूछ रहे स्वामी जी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज, तो स्वामी जी बोले अरे भगवान की इच्छा होती है तो मिल जाती है, नहीं इच्छा होती है तो आप सोचो कि व्रत कर रहे हो, उसमें व्रत चल रहा है, एकादशी है सोच लो, अब उसमें अब यदि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो कहीं ना कहीं से तो भोजन आ ही जाएगा। तो स्वामी जी वहां लिखे हैं कि उस गांव में एक शादी होने वाली थी, तो बारात आ रही थी, अब संयोग की बात है, जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी ना, उसका किसी दूसरे लड़के का साथ संबंध था, उस लड़के के साथ भाग गई। अब भोजन बहुत बनाया गया था, अब उधर बाराती आ रही थी, बारात जो है आ रही थी, जब वहां के लोगों को पता लगा कि यार लड़की तो भाग गई, तो बारात वहां ले जाके क्या करेंगे, किस लिए जाएंगे वहां, तो बीच में ही लौट करके आ गए। अब भोजन, इतने भोजन पड़ा हुआ है, बना हुआ है, क्योंकि वो सोचे कि यार क्या क्या जाए, भोजन भोजन नष्ट करना ठीक नहीं। किसी ने आकर आए, कुछ महात्मा लोग जो है हमको स्कूल में दिखाई पड़ रहे थे, तो बोले भाई कम से कम महात्माओं को तो ठीक से खिला दो, जो हो गया हो गया। तो बहुत भोजन लेकर के आए, और वहां से स्वामी जी कहे देखो अभी तो ठीक से खा लो, सब मिल गया। तो इसलिए यहां कहते हैं अस्नातिवा नास्नातिवा, मिल गया तो खा भी लेते हैं, नहीं मिल गया तो उनका उपवास भी है, और मिले तो वहां कभी मंत्र बोल करके भी, पाठ करके भी व्यक्ति खाता है, और भूख लग रही है तो बिना पाठ से भी खा लेता है, उसको गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और वहां रास्ते में कुछ खरीद लिए खाए, तो वहां गीता पढ़ेंगे क्या फिर? वो तो आ गया भोजन, आपको भूख भी लग रही है, भोजन आ गया तो व्यक्ति तुरंत खा लेता है, वहां वहां कोई नियम नहीं रहता है। तो इसी चीज को यहां कहते हैं क्षुधा मात्र को हटाना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है कि सवेरे चिंतन करूंगा, कि दोपहर चिंतन करूंगा, कि रात में सोते सोते चिंतन, जिस समय भी आपको समय मिले तो चिंतन करना चाहिए, उसके लिए निर्धारण नहीं है कि किस समय करना है। इसी चीज को टीका में और स्पष्ट बताते हैं, अस्नाति इति, अस्नाति वा अन्ने सति, अन्न यदि मिल जाए कदाचित भूंगते, न वा अस्नाति, नहीं मिलने से नहीं वो भोजन नहीं करता है। अब होगा तभी तो, अभी जैसे आप लोग गृहस्थ लोग हैं तो आपके पास सब चीज है, तो दुकान से भी मंगा लेंगे, चलो भाई आप भोजन नहीं बना सकते तो दुकान पे ऑर्डर कर दे, वो लेकर के आ जाएगा। बम्बे वगैरह में देखिए बहुत व्यवस्था है, एक बार कॉल कर दे तो आपके घर में पहुंचा देगा। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, और वो तो कहीं किसी नदी के किनारे पड़ा हुआ है, किसी पहाड़ के तलहटी में है, कहीं किसी जगह पे है जहां आसपास में कोई लोग नहीं है, तो संयोग से मिल गया तो खा भी लेता, नहीं मिला तो नहीं खा, उसका अभिप्राय नहीं कि तत्व चिंतन छोड़ देगा वो। तत्व चिंतन तो व्यक्ति का नित्य निरंतर चलता है, तब जाकर के विपरीत भावना जो है नष्ट होगी। तस्मिन असति क्षुधा बाधा विस्मारकात उत विस्मारक द्युतादि चेष्टया अनस्नन एव कालम नयति। यहां लौकिक लोगों के लिए बतलाते हैं, तस्मिन असति, भोजन नहीं मिलने पर नहीं करता है, तो क्षुधा को कैसे आप हटाएंगे? कहते हैं क्षुधा बाधा विस्मारक द्युतादि चेष्टया अनस्नन एव कालम नयति। अब भूख लगी है, कहीं भोजन नहीं है, तो द्यूत आदि क्रीड़ा खेल खेल रहे हैं। अब आजकल द्यूत कौन खेलता है? टीवी लगा करके बैठ गए आप, कोई सीरियल कोई फिल्म कोई कुछ लगा करके बैठ गए, और दो तीन घंटा वहां से चला, और सबसे ज्यादा क्या है, क्रिकेट खेल लगा दिया, पांच छह घंटा उसमें जाएगा व्यक्ति का, क्रिकेट खेल देख रहे हैं, टाइम चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? भूख लग रही थी इसको भी व्यक्ति भूल जाता है, टाइम पास तो करना ही है उसको। तो इसीलिए क्षुध बाधा विस्मारक, क्षुध बाधा को हटाने वाला दीप्तादि चेष्टया अनस्नन एव, बिना खाए ही कालम नयति, समय को व्यतीत कर लेता है। अन्यथा वा, अन्यथा कह करके यहां कोई विधि नहीं है, तिष्ठन गच्छन छयानो वा स्वेच्छया भूंगते। अब कहीं किसी जगह पे है तो भोजन कर लेता है, गच्छन चलते हुए भोजन कर लेता है, सयानो अब सोते सोते भी व्यक्ति खाता रहता है, कुछ चना वगैरह ना कुछ ऐसी चीज है, सोते सोते भी कुछ लोग खा लेते हैं। अब कोई पान खा रहा है तो सोते सोते खा लेते हैं कि नहीं खा लेते, खा रहा है तो सो करके भी खाते हैं लोग, इसमें कोई विधि नहीं है। एवं एन केन प्रकारेण तात्कालिकीं क्षुधाम क्षुध बाधाम अपनेतुम इच्छति, तात्कालिक जो क्षुधा है उसको मिटा लेता है। अत्र अयम अभिसंदेह उसका अभिप्राय को बताते हैं, क्षुधा बाधा निवृत्ति लक्षण दृष्ट फलाय भोजनम एव कार्यम। क्षुधा की जो बाधा है वो दृष्ट फल वाला है, भोजन करेंगे तो तुरंत क्षुधा शांत हो जाएगी, इसलिए भोजनम एव कार्यम उसके लिए कोई दूसरा कार्य नहीं करना पड़ेगा, भोजन करेंगे तब जाके क्षुधा मिटेगी, और दूसरा कुछ भी करेंगे। अब टीवी देखने से भूख मिटेगी क्या? भूख तो आस्ते आस्ते बढ़ेगी। अब सवेरे आपको करना चाहिए था, दोपहर में नहीं किए तो भूख बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी? अभिप्राय जो जितने बतलाए ना उसमें अस्नाति नवा अस्नाति अन्यथा, तो इन सब का अभिप्राय उसमें कहते हैं कि भोजन ही करना पड़ेगा क्षुधा निवृत्ति के लिए, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये तो दृष्टांत हो गया, दास्तांतिक में विपरीत भावना को नष्ट करने के लिए तत्व ज्ञान ही है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं है। जैसे शंकराचार्य भगवान कहते हैं किसी गुफा में अंधकार है, अनंत काल से है, अभी आपको गुफा दिखाई पड़ना, लेकिन जब आप गुफा नहीं दिख रहे तो अभी भी तो वहां अंधकार होगा, अनंत काल से उसमें अंधकार है। अच्छा, उस अंधकार को आप मिटाना चाहते हैं तो वहां बैठ करके जप करेंगे तो अंधकार मिटेगा कि नहीं? नहीं, कीर्तन करेंगे हरे राम राम राम, तभी तो वहां केवल प्रकाश करते ही अंधकार नष्ट हो जाएगा। भले कितने अनंत जन्मों से अनंत काल से उसमें अंधकार होगा, प्रकाश करते ही वो मिट जाएगा। ठीक इसी प्रकार विपरीत भावना को नष्ट करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अब जिस किसी प्रकार से आपको जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, दूसरे किसी से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए केवल तत्व ज्ञान, रीति ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पास ही, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचिरेण अधिगच्छति। उसके लिए तो केवल ज्ञान मात्र है, तत्व ज्ञान जो है आपको होना चाहिए। तो यहां आगे कहते हैं, जैसे जप आदि में नियम है, नहीं करने से दोष लगता है, प्रत्यवाय लगता है, कोई नियम करता है और नियम को त्याग कर देता है तो उसमें दोष लगता है, उसको आगे बताते हैं। जपादो भोजनाद वैलक्षण्यम दर्शयति, भोजन में जैसे इसे आगे बतलाए, चलते चलते भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, सो कर भी कर सकते हैं, इससे विलक्षण है जप आदि। जप जो है आपको नियम में करना पड़ेगा। नियमेन जपम कुर्यात् दकृतो प्रत्यवायतः अन्यथा करणेनर्थः स्वरवर्ण विपर्यया। नियमेन जपम कुर्यात्, जैसे नियम बतलाया गया है उस नियम के अनुसार जो है आपको जप करना पड़ेगा। अकृतो प्रत्यवायतः, यदि आप जप नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय दोष लग जाते हैं। नियमेन जपम कुर्यात। देखे हर जप अलग अलग प्रकार के हैं, एक प्रकार के जप नहीं है। अब ऐसा सोच लीजिए, जैसे आपके गुरु मंत्र का जप है, गुरु मंत्र का जप तो आप उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय आप कर सकते हैं, ये जप है। कुछ जप है जैसे आप कुछ कामनाओं को लेकर के करते हैं, कुछ भी कामनाओं को लेकर के, तो वहां आपको नियम से करना पड़ेगा। वहां जो जैसे जैसे बतलाया गया होगा उसके अनुरूप आपको करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कामना सिद्ध नहीं होगी, उस जगह पे कामना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए उस चीज को यहां लिए हैं, नियमेन जपम कुर्यात, नियम से आप जप करें। अकृतो, यदि आप नियम से जप नहीं करते हैं, प्रत्यवाय, उसमें दोष लग गया। दोष लग गया का मतलब जो आप चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। अब जैसे आप पुत्रिष्टि यज्ञ करना चाहते हैं, उसका जो विधि विधान होगा उसके अनुरूप आपको करना पड़ेगा, और पंडित लोग उधर मंत्र पढ़ रहे हैं और आप इधर हिसाब किताब कर रहे हैं, तो दोनों में तालमेल बैठा क्या? वो कुछ कर रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं। वहां जैसे आपको बतलाया गया, नहीं दो घंटा आपको वहां बैठना है, हवन करना है, ये जप करना है, ये आपको श्रवण करना है, जो जो उसमें लिखा गया होगा, साथ में आपकी पत्नी उसमें बैठना चाहिए, पत्नी आवेक्षितम आज्यम उसमें लिखा है कि जब आप हवन करेंगे तो वहां पत्नी एक बार जो है घी को देख लेना चाहिए। आप कहें घी को क्यों देखेगी वो, ऐसे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र जो बतलाया है कि देखने से वहां अदृष्ट उत्पन्न होता है, शुद्ध होगा तब जाकर के वहां कर सकते हैं। तो इसलिए यहां उस चीज को लिए हैं कि जब आप नियम से करेंगे, यहां गुरु मंत्र का नहीं दिया है। गुरु मंत्र का तो आप तो किसी भी समय में कर सकते हैं। एक बार एक गाय चराने वाला था, गाय भैंस चराने के लिए जाता था, तो एक महात्मा को प्राय देखता था कि बैठ करके कुछ जप फप करते थे। इसके मन में जिज्ञासा होगी, यार क्या चीज क्या करते थे, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो एक दिन जिज्ञासा हुई, गए ये कहे कि महाराज जी आप क्या करते हैं? मैं तो भगवान से मन लगाता हूं, भगवान के साथ तालमेल बैठाता हूं, शायद वाईफाई लग जाए तो फिर बात जो है उनसे हो जाएंगी। तो इसने कहा कि मैं भी भगवान से मिल सकता हूं क्या? हाँ क्यों नहीं, जो भी मानव है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और मैं गाय चरा, अरे गाय चराने से कोई मतलब नहीं है, यहां गाय चराने से कोई मतलब नहीं है। तो महात्मा जी उनको एक मंत्र कहे, लेकिन ये मंत्र बोलने पर कभी अभ्यास था ही नहीं। तो उसमें बहुत कोशिश किए, तो महात्मा जी कहे कि देखो इनको तो ऐसी आदत है, गाय बल के इनके सिंह है, नरसिंह बोलो। तो सिंह, गायों भैंस के तो सिंह होते हैं ना, वो देखता रहता था, बोलता रहता है, वो लंबे सिंह वाला, पतले सिंह वाला, टेढ़े मेढ़े सिंह वाला, ये बोलता रहता था। तो महात्मा जी बहुत युक्ति करके लास्ट में गए, नरसिंह बोलो, तो नरसिंह बोल दिया हूं, बस यही जप करना, नरसिंह रंग से बोलना है इसमें। वहां ना ओम लगाए ना नमः लगाए, वो कहे कि नरसिंह बोलना। अब तब तक नरसिंह नरसिंह बोलना शुरू कर दिया वो। अब रास्ते में एक दूसरा गोपाल उसको मिल गया, गाय चराने वाला, अरे क्या बड़बड़ाता आ रहा है। तो उसके साथ जो है बातचीत हो गई, वो भूल गया कि महात्मा जी क्या मंत्र दिए थे, महात्मा जी क्या मंत्र दिए थे, भूल गया। वहां भूल गया तो याद करने लगा कि यार कुछ सिंह तो लग रहा था, सिंह शब्द तो जरूर आ रहा था, क्या क्या बोले, शुरू वाला नर शब्द उसका हट गया। तो उसने बहुत याद करने के बाद घर में बैठा रहता शांति में, भैंसे के सिंह, हाँ ये याद आ गया, और जय भैंसे के सिंह, जय भैंसे के सिंह, यही जप करने लगा। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से भी वो भगवान का ही नाम जप कर रहा है। तो एक दिन भगवान बैठे बैठे विचार किए कि भक्त जो है बहुत मेरा नाम ले रहा है, इसको एक बार
मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी माता बोले कि क्या पागलपन आप कर रखे हैं, आपका नाम ले रहा है वो तो जय भैंसे के सिंह बोल रहा है, जय भैंसे के सिंह ये कोई आपके नाम है? ठीक है नरसिंह ये आपके नाम है, ये तो मैं जानती हूं। तो भगवान कहेंगे देखो तुम परीक्षा करके देखो। तो लक्ष्मी माता भी साथ में आई, भगवान भी आए, दोनों साथ में आए। तो भगवान कहे कि आप देखो, आजमा करके देखो क्या जप कर रहा है। वहां एक गड्ढा था, भगवान वहां छुप गए और लक्ष्मी माता जी एक सामान्य नारी की तरह जो है उनके पास आए। वो कहे कि भाई क्या जप कर रहे हो, किसके नाम ले रहे हो? वो तो अपने आंख बंद करके उनका चल ही रहा था, जय भैंसे की सिंह जय भैंसे की सिंह। लेकिन बार बार पूछी कि किसके जप कर रहे हो, वो भी थोड़ा गुस्से में आ गया, तुम्हारे खसम के नाम ले रहा हूं। अब लक्ष्मी माता को लगा कि इनको किसी पता लगा। तो फिर दूसरा प्रश्न किया, अच्छा मेरे खसम के नाम वो कहां है, होगा कहां, यह गड्ढा बड्ढा में छुपा होगा, कहां होगा? तो लक्ष्मी माता बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गए, वहां लौट गए, सचमुच में आपके ही नाम ले रहा है वो। तो नाम लेने में इसमें नियम नहीं है, उठते बैठते किसी भी समय में आप ले सकते हैं, वो तो भाव परमात्मा। लेकिन कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं सांसारिक लौकिक, तो वहां आपको नियम लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे शास्त्र बतलाया है वहां कोई प्रश्न नहीं है, जो बोला है उसको आपको पालन करना पड़ेगा। तो इसी चीज को यहां बताए हैं, और यदि ऐसा नहीं करेंगे अन्यथा करने अनर्थ, आप यदि मनमानी ढंग से उसको करेंगे तो उसका फल नहीं मिलने वाला है, आपकी ही हानि हो जाएगी। स्वर वर्ण विपर्ययात, उसमें यदि स्वर उदात अनुदात स्वरित जो स्वर है, स्वर यदि भंग हो जाए अथवा वर्ण वर्ण भी, अब जैसे श श स वर्ण होते हैं, अब कुछ लोग हैं कि उसको बोल नहीं पाते हैं, कुछ को कुछ हो जाएगा उसमें। अब जैसे वहां राजस्थान के लोग हैं, उनको सतायुर्भव नहीं होगा, वो हतायुर्भव बोलेंगे, वो श को ह बोलते हैं वहां, तो वहां आशीर्वाद लेना भी खतरा है, वहां आशीर्वाद लेना खतरा है। वो हमारे साथ बिहार के एक महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा है, तो ड को र बोलेंगे, वो सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा था, तो सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा था बोले, ड को र ही उच्चारण करेंगे। तो ऐसे उच्चारण है, यहां जहां शास्त्र में आपको जैसे बतलाया गया है ना, उसको ऐसे उच्चारण करना पड़ेगा। इसमें दृष्टांत दिए हैं, इंद्र शत्रु वर्धस्व, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।